13 नवंबर दिन मंगलवार दिन भर मैं हूं रेहान फदर। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 44 पहुंची।
There were people literally burning in their cars, abandoning their vehicles, dying on the road.
सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला पर अपने पूर्व फैसले पर पुनर्विचार करने का फैसला लिया। चर्चा होगी छठ त्योहार के अलग अलग पक्षों पर भी। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। उत्तरी और दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग पर नियंत्रण पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। दमकल कर्मियों ने अभी तक दो जगहों पर लगी आग को काबू में कर लिया है। इस आग की वजह से अभी तक 44 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। भीषण आग की वजह से लॉस एंजल्स के आसपास लगभग 35,000 एकड़ इलाका राख हो गया है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के विवादित फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि ये रोक 7 दिसंबर तक जारी रहेगी। राष्ट्रपति सिरिसेना ने पिछले हफ्ते संसद को भंग कर दिया था और 5 जनवरी को आम चुनाव की घोषणा की थी। खबरों के मुताबिक उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए उनके उम्मीदवार महिंदा राजपक्षे के पास बहुमत साबित करने के लिए जरूरी संख्या नहीं थी। इजरायली सेना और फलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच गजा पट्टी पर संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है। इजरायल की ओर से किए गए हवाई हमलों में कम 6 फलिस्तीनियों के मारे जाने की सूचना है। वहीं हमास चरमपंथियों ने भी इजरायल पर रॉकेट दागे हैं, जिसकी वजह से एक आम नागरिक की मौत की खबर है। इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉनरिकस ने कहा,
हमास दक्षिणी इलाके में रहने वाले आम इसराइली नागरिकों को डराने की कोशिश कर रहा है। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए हमास को उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं। ये थे इसराइली सेना के एक प्रवक्ता के शब्द। लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा है कि वे शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लंदन में इस साल अभी तक कुल 118 हत्याएं हो चुकी हैं। साल 2017 में भी लंदन में इतनी ही हत्याओं के मामले दर्ज हुए थे। हत्या के इन मामलों में 31 अक्टूबर से शुरू हुए हफ्ते में कुल 5 हत्याएं चाकू से हुए हमले की वजह से हुई। सादिक खान ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता हिंसात्मक अपराधों को रोकना है।
I'm the dad of 2 teenager children who live in the areas that the people you're talking about are the victims of crime.
मैं दो जवान होते बच्चों का पिता हूं। मेरे बच्चे लंदन की तमाम जगहों पर आते जाते रहते हैं। एक पिता होने के नाते अपराध के ये आंकड़े मुझे चिंतित करते हैं। एक मेयर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने शहर को सुरक्षित रखूं। मैं जब भी सुबह सोकर उठता हूं और किसी नए अपराध की खबर सुनता हूं तो चिंतित हो जाता हूं। इस बारे में मैंने कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की है। ये थे लंदन के मेयर सादिक खान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। थाईलैंड में बच्चों को किक बॉक्सिंग के खेल में हिस्सा लेने से रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले एक 13 वर्षीय बच्चे की ब्रेन हैमरेज की वजह से मौत हो गई थी। अनुचा थासाको नाम के इस बच्चे को किक बॉक्सिंग के एक मैच के दौरान सिर पर गहरी चोट आई थी। ये बच्चा 8 साल की उम्र से किक बॉक्सिंग में हिस्सा ले रहा था, जिससे पैसा जुटाकर वो अपने परिवार की मदद करता था। थाईलैंड की सरकार अब किक बॉक्सिंग में बच्चों के हिस्सा लेने के लिए एक निश्चित उम्र तय करने पर विचार कर रही है। लीबिया के एक विद्रोही नेता का कहना है कि वे इटली में होने वाले लीबिया के भविष्य से जुड़ी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। खलीफा हफ्तार पूर्वी लीबिया में अपनी खुद की सेना का नियंत्रण करते हैं। इस समय इटली के शहर पलेरमो में ही हैं, लेकिन उनके दफ्तर की ओर से बताया गया है कि वे इस बैठक में शामिल होने की जगह स्थानीय नेताओं के साथ अलग से मुलाकात करेंगे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। कैलिफोर्निया के इतिहास में अब तक लगी सबसे भीषण जंगल आग में मरने वालों की संख्या 44 पहुंच गई है। सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। आग बुझाने वालों को आग बुझाने में कुछ सफलता जरूर मिली है। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
उत्तरी और दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में पिछले हफ्ते शुरू हुई इस आग को कैलिफोर्निया की अब तक की बदतरीन आग कहा जा रहा है। अब तक इस आग से 44 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, लेकिन अभी बहुत से इलाकों में जहां पूरे शहर और बस्तियां जलकर राख हो गई हैं, वहां सैकड़ों घरों की छानबीन की जा रही है और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। आग से ग्रस्त इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की वजह से जंगल की आग इतनी तेजी से बढ़ी कि आसपास के रिहायशी इलाकों को देखते देखते लपेटे में ले लिया। अब तक 7,000 से अधिक इमारतें आग से तबाह हो चुकी हैं। बट काउंटी के शरीफ कोरी होनिया का कहना है कि अभी 100 से ज्यादा लोगों का कोई पता नहीं चल रहा है। अधिकारियों ने कई शहरों और कस्बों को खाली कराने का आदेश दिया और आग से बचने के लिए अपने घर बार छोड़कर 3,00,000 से अधिक लोगों ने सुरक्षित जगहों पर जाकर अपनी जान बचाई। तटीय इलाकों में पनाह लेने के मकसद से हजारों लोगों ने पैसिफिक कोस्ट हाईवे का रुख किया। अब हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर कैंपों में रह रहे हैं और बहुत से लोग आसपास के होटल और मोटल में पनाह लिए हुए हैं। जिनको जगह नहीं मिल पाई वो अपनी कारों में ही रह रहे हैं। बच गए लोग तबाही की दास्तान सुना रहे हैं। आग में तबाह हुए पैराडाइज शहर के कोर्टनी जनेवू अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थान पर आ गए हैं। वो कहते हैं,
there were people literally burning in their cars, abandoning their vehicles, dying on the road. It was just utter panic.
कैलिफोर्निया के दक्षिणी इलाके में भीषण आग की वजह से लॉस एंजलिस और मालिबू जैसे इलाकों के आसपास करीब 90,000 एकड़ से ज्यादा का इलाका जलकर राख हो गया है। कैलिफोर्निया में इमरजेंसी लागू कर दी गई है और राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। तेज हवा और पहाड़ी इलाका होने की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। अभी तक सिर्फ 30% ही काबू पाया जा सका है। कई जगहों पर विमान और हेलीकॉप्टर से पानी और अन्य पदार्थ डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
सुप्रीम कोर्ट ने केरल में स्थित सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के अपने फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, परंतु वो इस पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं पर खुले न्यायालय में 22 जनवरी को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के शीर्ष अदालत के 28 सितंबर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए 48 याचिकाएं दायर की गई हैं। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
आज ऐसा दिन था कि केरला की सारी आबादी और स्वामी अय्यप्पा के भक्तों की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर लगी रही, जिसने भी सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर के फैसले को विरोध किया और स्वागत भी किया था। उनको उम्मीद थी कि न्यायालय से उन्हें कुछ राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली पीठ अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हो गई और कहा कि वो खुली कोर्ट में समीक्षा याचिकाओं को 22 जनवरी को सुनेगी, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसले में लिखित रूप से स्पष्ट कर दिया कि वो 28 सितंबर के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाया है। मतलब ये कि हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत जारी रहेगी। कोर्ट के आज के फैसले पर दो तरह की प्रतिक्रिया आई हैं। पहले सुनते हैं प्रयार गोपालकृष्णन को, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं ट्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के, जो सबरीमला मंदिर को संभालती है। प्रायर गोपाल कृष्णन ने बीबीसी को बताया, ये भक्तों के लिए एक प्रारंभिक जीत है और हमें उम्मीद है कि 22 जनवरी को कोर्ट कहेगी कि स्वामी अय्यप्पा नैतिक ब्रह्मचारी हैं। ये एक शुरुआत है भक्तों के उम्मीद और प्रार्थना को हासिल करने के लिए। ये थे प्रायर गोपाल कृष्णन के शब्द। 28 सितंबर का फैसला आने के बाद कई महिलाएं ने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के सुरक्षा के बावजूद वो मंदिर में नहीं जा पाए। सबरीमला की कड़ी पहाड़ पर बहुत सारे भक्त थे जिन्होंने महिलाओं पर हमला भी किया था और रोका भी था उन महिलाओं को, जिन्हें उन्हें लगे कि वो 50 साल से भी कम उम्र के थे। तो अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके फैसले पर रोक नहीं लगाई है, तो सबरीमला कर्मा समिति का क्या रुख होगा? हमने यह सवाल समिति के संयोजक SJR कुमार से पूछा। उन्होंने कहा,
रोकने के बाद आपने, मैं पहले से बोला आपको, तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, तो 22 जनवरी को फिर से आ रहा है कोर्ट के सामने विषय, तो अच्छा रहेगा, तो कोई प्रश्न उधर नहीं होगा, उतना अच्छा होगा, इसलिए महिला लोग थोड़ा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेकर लॉ एंड ऑर्डर अपने साथ लेकर हाथ में लेना ठीक नहीं है, ये सोचना पड़ेगा। वो तो एक विषय है, उनको रिक्वेस्ट है उनके साथ, दूसरे विषय का है कोर्ट को भी चिंता करना पड़ेगा कि ये 61-70 डेज का विषय है, तो ये सीजन में थोड़ा शांत रहने के लिए थोड़ा स्टे मिलेगा तो ठीक रहेगा, तो बाद में 22 में जो भी होगा ठीक है, होने दीजिए।
दरअसल कोर्ट के आज के फैसले से एक तरह से ये संदेश गया है कि 28 सितम्बर का फैसला बदल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि 17 नवम्बर से जब मंदिर के दरवाजे फिर से खुलेंगे 2 महीनों का प्रमुख उत्सव के लिए, तब केरला की सरकार पर दबाव और भी बढ़ जाएगा। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रचार अब जोर पकड़ता जा रहा है। राज्य की 90 में से बची हुई 72 सीटों पर इस महीने की 20 तारीख को मतदान होगा। माओवाद प्रभावित इलाकों में तो भाजपा ने माओवाद को मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन अब मामला भ्रष्टाचार और नोटबंदी पर जाकर टिक गया है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
पिछले पखवाड़े भर में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने जहां भी सभा की, उन्होंने राफेल, पनामा घोटाला, काला धन और नोटबंदी का उल्लेख जरूर किया, लेकिन भाजपा इन मुद्दों से बचती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह और दूसरे नेता माओवाद की ही चर्चा करते रहे। अब जबकि माओवाद प्रभावित इलाकों में मतदान हो चुके हैं, तब लगता है कि भाजपा के भी अब मुद्दे बदलने लगे हैं। बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार नोटबंदी का लाभ गिनाते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा।
नोटबंदी का हिसाब मांगते, अरे नोटबंदी का कारण ही था कि फर्जी कंपनियां पकड़ी गई, और फर्जी कंपनियां पकड़ी गई उसी के कारण तो आपका कारोबार पकड़ा गया, और उसी कारण आपको जमानत पे निकलना पड़ा।
प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि केंद्र से 1 रुपया निकलता है और लोगों तक 15 पैसा पहुंचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी के कहे को याद करते हुए कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए।
वो कौन सा पंजा था जो रुपया घिस घिस करके 15 पैसा बना देता था, ये नोटबंदी ने उन 85 पैसों को बाहर निकाला है।
प्रधानमंत्री ने पहली बार दावा किया कि नोटबंदी के कारण ही सरकार के पास पैसे आए और उस पैसे को विकास के काम में लगाया जा रहा है।
पहले ये रुपये किसी के बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे, किसी के बोरे में भर करके रखा हुआ था, किसी के कबोड़ भरे पड़े हुए थे, ये नोटबंदी लगी ये सबको बाहर आना पड़ा।
मंगलवार को जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे तो जाहिर है उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे।
पूरी जनता इस बात को जानती है कि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी में हिंदुस्तान के गरीब से गरीब लोगों के तकिए के अंदर से और महिलाओं के तकिए के नीचे से पैसा लेकर अनिल अंबानी जैसे लोगों को दिया है। 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके नरेंद्र मोदी ने राफेल मामले में अनिल अंबानी की जेब में डाला है, जनता का पैसा है। वो अब वो उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो अच्छी चीज है।
अगले 5 दिनों तक कांग्रेस, भाजपा और बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेताओं के दौरे छत्तीसगढ़ में लगातार होने वाले हैं। तेवर यही बता रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों के साथ साथ भ्रष्टाचार, GST, नोटबंदी और राफेल जैसे मुद्दे भी चुनाव प्रचार में उछलते रहेंगे। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए पर्चे दाखिल करने का काम शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने प्रत्याशियों की पहली सूची भी तैयार नहीं कर सकी है, क्योंकि पार्टी नेताओं के बीच नामों को लेकर मतभेद बने हुए हैं। सत्तारूढ़ BJP में भी विरोध के स्वर थम नहीं रहे हैं। जयपुर से नारायण भारेट की रिपोर्ट।
टिकट की चाहत में कोई दिल्ली में डेरा डाले हुए है तो कोई जयपुर में नेताओं के फेरी लगा रहा है। प्रत्याशी चयन में सत्तारूढ़ बीजेपी और प्रतिपक्ष में कांग्रेस नेता फूक फूक कर कदम उठा रहे हैं। कांग्रेस में लगातार बैठकों के बाद भी पहली सूची तैयार नहीं की जा सकी है क्योंकि वरिष्ठ नेताओं में कुछ सीटों पर मतभेद बने हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को दिन भर सलाह मशविरा किया लेकिन प्रत्याशी चयन को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से कहा कांग्रेस अपनी सूची में युवा और महिलाओं को जगह देगी।
सभी को प्रयास किए जा रहे हैं कि युवाओं को भी महिलाओं को भी अधिक से अधिक सीटें मिले और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का विशेष निर्देश है कि युवाओं को और महिलाओं को नेचरों को
इस बीच कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जयपुर में प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी के घर पर हंगामा किया और नारेबाजी की। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की पहली सूची अब किसी भी वक्त आ सकती है। उधर सत्तारूढ़ बीजेपी में भी विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। टिकट ना मिलने के बाद बीजेपी विधायक हबीबुर रहमान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले जलदाय मंत्री सुरेंद्र गोयल ने पार्टी से नाता तोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बाड़मेर में बीजेपी नेता प्रियंका चौधरी ने सरकारी पदों से त्याग पत्र दे दिया है लेकिन बीजेपी अध्यक्ष मदन लाल सैनी कहते हैं पार्टी में टिकटों को लेकर कोई विरोध नहीं है।
कोई बगावत नहीं है, हमारी सबसे बातचीत हो गई। एक बार पार्टी के कार्यकर्ता का नाम करता है तो थोड़ा मन में होता है। बाकी जिन जिन लोगों के नाम आए हैं, जिनको हमने टिकट दी है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को जनता ने, पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया है और सबका ये कहना है कि जो पार्टी का चयन हुआ है वह बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन हुआ है और निश्चित रूप से अपने अपने विधानसभाओं में वो ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे।
भारत में लोकतंत्र परवान चढ़ा तो हर विधानसभा सीट पर जनता की सेवा करने वालों की संख्या बढ़ गई। सियासी दलों की मुश्किल यह है कि वो उस भीड़ में सही जनसेवक का चेहरा नहीं खोज पा रहे हैं। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5,875, 9,510 और 11,995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद और इलाहाबाद जिलों के साथ ही मंडल यानी कमिश्नरी के नाम भी बदल दिए गए हैं। आज कैबिनेट ने इनसे संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इलाहाबाद जिले का नाम बदलकर प्रयागराज करने संबंधी प्रस्ताव को पहले ही पारित किया जा चुका था। वहीं नाम बदलने संबंधी सरकार के फैसलों की आलोचना अब विपक्ष के अलावा सहयोगी दल भी करने लगे हैं। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मक मिश्र की ये रिपोर्ट।
यूपी कैबिनेट ने अयोध्या और प्रयागराज के संबंध में आज जो प्रस्ताव पारित किया उसके बाद फैजाबाद और इलाहाबाद नाम आधिकारिक रूप से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इन जिलों के बाद अब कमिश्नरी यानी मंडल के नाम भी बदल दिए गए। हालांकि हाईकोर्ट, विश्वविद्यालय, रेलवे स्टेशन इत्यादि के नाम के आगे अभी फैजाबाद और इलाहाबाद जुड़े रहने वाली दुविधा बरकरार है। कैबिनेट की बैठक के बाद नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया,
आज कैबिनेट में ये प्रस्ताव आया था कि इलाहाबाद मंडल का नाम परिवर्तित कर प्रयागराज मंडल प्रयागराज किए जाने के संबंध में। आज कैबिनेट ने इसको औपचारिक रूप से पास कर दिया। जनपद फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके जनपद अयोध्या एवं मंडल फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके मंडल अयोध्या किए जाने के संबंध में ये प्रस्ताव भी कैबिनेट ने औपचारिक रूप से पास कर दिया है और इसमें जो पूर्ववत जिले थे वही जिले इसमें शामिल रहेंगे।
दरअसल इलाहाबाद जिले का नाम बदलकर प्रयागराज पहले ही किया जा चुका है और उस पर अमल करने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। वहीं फैजाबाद जिला और मंडल का नाम भी बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि अभी तक अयोध्या फैजाबाद जिले के ही अंतर्गत आता था, यानी दोनों शहरों का एक साथ अस्तित्व था। अब जबकि जिला अयोध्या हो गया है तो अयोध्या कस्बा किस नाम से जाना जाएगा, ये सवाल अभी भी लोगों के मन में है। पत्रकार वार्ता में भी ये सवाल पूछा गया और फिर प्रमुख सचिव सूचना अवनीश अवस्थी ने इसे कुछ इस तरह स्पष्ट किया।
देखिए, फिर से क्लियर कर दें, डिस्ट्रिक्ट का नाम अयोध्या रहेगा, डिवीजन का नाम अयोध्या रहेगा, बाकी एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
पिछले साल दिवाली के मौके पर राज्य सरकार ने अयोध्या नाम से ही नगर निगम बनाने की भी घोषणा की थी। इस बीच अब ऐसी चर्चाएं भी जोर पकड़ने लगी हैं कि राज्य में कई और शहर ऐसे हैं जिनके नाम बदले जाएंगे। तमाम शहरों के लिए तो मांग भी होने लगी है। मसलन मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, आजमगढ़ इत्यादि। वहीं शहरों के नाम बदलने की राज्य सरकार की कवायद का विरोध अब विपक्षी राजनीतिक दलों और बौद्धिक जमात से आगे निकलकर बीजेपी के सहयोगी दलों तक पहुंच गया है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हैं।
मुगलसरा का नाम चेंज किया, अयोध्या का नाम चेंज किया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये मुगलों के नाम से है, तो भारतीय जनता पार्टी में उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शाहनवाज हुसैन, केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, राज्य मंत्री हैं मोहसिन रजा। पहले इन तीनों लोगों का नाम तो बदल दें, और कह रहे हैं कि मुसलमानों के नाम से है, तो उनका नाम चेंज पहले करें, तब इधर ध्यान करें।
वहीं दूसरी ओर शहरों के नाम बदलने के क्रम में आने वाले कथित तौर पर अनावश्यक सरकारी खर्च पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि राज्य सरकार के तेवरों और इस काम में उसकी जल्दबाजी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो विरोध के ऐसे तर्कों के आगे झुकेगी। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
लोक आस्था के पर्व छठ में मंगलवार को अस्ताचलगामी सूर्य को देकर को अर्ध देकर पहला अर्ध संपन्न हुआ। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छठ व्रतियों ने जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्ध दिया। पटना से सीतू तिवारी ने ये रिपोर्ट भेजी है, जिसमें छठ के अलग अलग पक्षों को दिखाया गया है।
And I hope that all BBC Hindi viewers will enjoy it. Kelva ke paat paare ho gyan suraj male jhake juke. Kelva ke paat paare ho gyan suraj male jhake juke. Bekarelu chhat paratiya se jhake juke.
यह आवाज है 43 साल की क्रिस्टीन गेजो की। अमेरिकी नागरिक क्रिस्टीन को 2 साल पहले ही छठ के बारे में मालूम चला है। सूर्य की उपासना के इस पर्व से वो कुछ यूं आकर्षित हुई कि उन्होंने छठ के लोकगीतों को अपनी आवाज दी। वो बताती हैं कि एक फेसबुक फ्रेंड के जरिए उन्होंने गीतों का भाव समझा और उसे अपनी आवाज दी, जिसे अब तक लाखों लोग सुन चुके हैं। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में रहने वाली क्रिस्टीन से मीलों दूर पटना के घाटों पर भी छठ व्रती अपने आराध्य को पूज रहे हैं। छठ मुख्य रूप से अविभाजित बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसमें अस्ताचलगामी और उदयीमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। 4 दिन तक चलने वाले इस व्रत में पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए और फिर चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पर्व में सामूहिकता और सामाजिक समरसता की भावना प्रधान है, इसलिए छठ ही वो मौका होता है जब देश विदेश के अलग अलग हिस्सों में बसे लोग अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटते हैं। साल 2014 में युवा कवि और पत्रकार कुमार रजत ने छठ के इसी नजरिए को कविता में ढाला तो वो सोशल साइट्स पर वायरल हो गया। रजत की कविता की कुछ पंक्तियाँ उनकी ही आवाज में सुनिए।
ये छठ जरूरी है उस नई पौध के लिए जिसे नहीं पता कि 2 कमरों से बड़ा घर भी होता है, उसके लिए जिन्होंने नदियों को सिर्फ किताबों में देखा है, उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए जो समानता की वकालत करता है, जो बताता है कि बिना पुरोहित भी पूजा हो सकती है। ये छठ जरूरी है गागर, नींबू और सुथनी जैसे फलों को जिंदा रखने के लिए, सूप और दौरा बनाने वालों के लिए।
लेकिन कृषि संस्कृति पर आधारित इस पर्व में दबे पांव राजनीति भी अपनी जगह बना रही है। गुजरात में साबरमती नदी में छठ घाट बनना और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का छठ को लेकर बयान छठ में राजनीति की घुसपैठ का संकेत है। आलम यह है कि छठ के पारंपरिक लोकगीतों के साथ साथ लालू प्रसाद यादव के परिवार की परेशानियां और छठी मैया की महिमा के इर्द गिर्द बुने गीत इस बार लॉन्च हुए हैं, जिनके YouTube पर व्यूज भी लाखों की तादाद में है। वरिष्ठ पत्रकार एस ए शाद कहते हैं कि छठ का संस्थानीकरण का श्रेय बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को जाता है। यही वजह है कि इस बार जब वो छठ नहीं कर रही और परिवार के सामने कई मुसीबतें हैं, तो उनके समर्थक ऐसे गाने लॉन्च कर रहे हैं।
लालू प्रसाद जब चीफ मिनिस्टर बने, उसी टाइम से राबड़ी देवी छठ करती थी, तो एक चीफ मिनिस्टर हाउस में जब छठ होने लगा तो इसका एक बहुत बड़ा मैसेज दिया और इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी। और फिर जब राबड़ी देवी खुद बनी चीफ मिनिस्टर और उसके बाद उन्होंने खुद छठ करना शुरू किया, तो एक तरीके से कहिए कि उन्होंने छठ को इंस्टीट्यूशनलाइज किया।
लेकिन राजनीति से इतर सबसे बड़ा संकट जो फिलहाल छठ के सामने है वो प्रकृति का है। छठ के लोकगीतों में पटना के गंगा घाटों का जिक्र है, लेकिन गंगा, दूसरी नदियां, तालाब, जिनके संरक्षण का संदेश छठ पर्व के लोकगीतों में है, वो गायब होते जा रहे हैं। आलम यह है कि लोग अब घरों में कृत्रिम तालाब बना करके पूजा कर लेते हैं। 1998 से गंगा बचाने के लिए लगातार संघर्षरत गुड्डू बाबा कहते हैं,
वो तो जब से गंगा को बचाओ अभियान का हम लोगों ने शुरुआत किया था 98 से, उस समय से लेकर आज तक यह दुर्भाग्य है और राज्य सरकार चली और रही है कि लोगों को सीवरेज के पानी, जो गंदा पानी जाता है, उसी के बीच खड़े होकर अर्घ देना पड़ेगा।
छठ वह पर्व है जिसमें वैज्ञानिक सोच, सभ्यता और हमारी संस्कृति का अद्भुत मिलन है। इसमें साक्षात सूर्य देवता की पूजा है, जो हम सब पर अपनी रोशनी समान रूप से फैलाते हैं। आइए हम सब भी उसी तरह समानता और समरसता के मूल्यों को अपनाएं जैसे हमारे आराध्य सूर्य अपनाते हैं। सीतू तिवारी, BBC, पटना।
सीतू तिवारी की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी जरूर लिखेगा। और अब नजर दौड़ाते हैं आज के खेल समाचारों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं हांगकांग, जहां पर बैडमिंटन कोर्ट पर खेला जा रहा है हांगकांग ओपन। और आज मुकाबला था पारुपल्ली कश्यप का मलेशिया के खिलाड़ी इस्कंदर ज़ुल्कारनैन के साथ। इस मुकाबले में उन्हें वॉकओवर मिला, जिसके बाद वो दूसरे राउंड में प्रवेश कर गए, जहां उनका मुकाबला हुआ चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी जेन हाओ के साथ। और इस मुकाबले में 21-7, 12-21 और 21-18 से पारुपल्ली कश्यप ने फतेह हासिल की। और अगर आपको टेनिस के कोर्ट पर लेकर चले तो आज ATP टूर फाइनल्स में ग्रुप स्टेज में मुकाबला है साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी के एंडरसन का जापान के खिलाड़ी के निशिकोरी के साथ। तो वहीं स्वीडन के रॉजर फेडरर ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी डोमिनिक थीम से भिड़ेंगे। आपको बता दें, रॉजर फेडरर अपने पहले मुकाबले में की निशिकोरी से हार चुके थे, ऐसे में ये मुकाबला बेहद अहम हो जाता है। तो वहीं नोवाक जोकोविच के मुकाबले की बात करें तो उन्होंने पहले मुकाबले में अमेरिका के खिलाड़ी जॉन को मात दी। ATP टूर फाइनल 11 नवंबर से शुरू हुआ था और अब 18 नवंबर तक चलेगा।
सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। उत्तरी और दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग पर नियंत्रण पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस आग की वजह से अब तक 44 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के विवादित फैसले पर 7 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। राष्ट्रपति सिरिसेना ने पिछले हफ्ते संसद को भंग कर दिया था और 5 जनवरी को आम चुनाव की घोषणा की थी। इसराइली सेना और फलस्तीनी चरमपंथियों के बीच गजा पट्टी पर संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है। इसराइल की ओर से किए गए हवाई हमलों में कम से कम 6 फलस्तीनियों के मारे जाने की सूचना है। लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा है कि वे शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लंदन में इस साल अभी तक कुल 118 हत्याएं हो चुकी हैं। साल 2017 में भी लंदन में इतनी ही हत्याओं के मामले दर्ज हुए थे। थाईलैंड में बच्चों को किक बॉक्सिंग के खेल में हिस्सा लेने से रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले एक 13 वर्षीय बच्चे की ब्रेन हैमरेज की वजह से मौत हो गई थी। लीबिया के एक विद्रोही नेता का कहना है कि वे इटली में होने वाली लीबिया के भविष्य से जुड़ी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। खलीफा हफ्तार पूर्वी लीबिया में अपनी खुद की सेना का नियंत्रण करते हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।